हर हो भरपूर एकांत हो जरूर। या घर हो या बाहर हो या कहीं हो, हर हालत में बैठो याद में प्यार दिल में। धैर्य रखो अडिग रहो मन साधो, याद में लीन बैठो हर दिन घंटे दो। बीज को बोया कैसे संजोया संकल्प से उगाया, विघ्न हटा अंकुर फूटा अहंकार टूटा। अंधेर मिटेंगे फूल खिलेंगे फल मिलेंगे, लहो निराश होगा प्रकाश तम का बिना।
ओम शांति। मुरली में आया है राइट हैंड, तो सभी अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे और अपने आप से कहेंगे ये मेरा राइट हैंड है। और बाबा का राइट हैंड बनने के लिए मुझे क्या करना है, ऐसी तीन बातें अपनी डायरी में लिखेंगे। बाबा का राइट हैंड बनने के लिए ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जो मुझे करनी है, जो भगवान कहे ये मेरा राइट हैंड है। जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो मोबाइल में लिख सकते हैं। यूरोप में एक स्थान इटली है, बहुत वर्षों पहले वहाँ किसी एक दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया। चर्च को ध्वस्त कर दिया और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया। युद्ध पूरा हुआ, देश के धार्मिक लोग पादरी आए और उन्हें बड़ा दुख हुआ यह देखकर कि जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति है उसके दोनों हाथ टूट गए हैं। अब उनके सामने प्रश्न था कि इस मूर्ति का क्या किया जाए, क्या इसे रिपेयर किया जाए और उसको हाथ जोड़े जाए, कृत्रिम हाथ बनाए जाए मूर्ति के लिए और फिर चर्च को रिपेयर कर पूर्ण उद्धार उसका पुनः उद्धार कर उसको फिर से स्थापित किया जाए। परंतु ये बड़ा अशुभ होगा, अपशकुन सा होगा, जो खंडित मूर्ति को रखा जाए। किसी भी मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं रखी जा सकती, तो क्या किया जाए? और एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बहुत अच्छा उत्तर लेके आया। उसने लिखा, हम मूर्ति को वैसे ही रखेंगे बिना हाथ वाले और नीचे एक लाइन लिखेंगे, यू आर माई हैंड्स। जो भक्तगण आ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे कि मेरे तुम मेरे हाथ हो, मैं तुम्हारे द्वारा कार्य करूंगा। वो मूर्ति आज भी है और वो लिखा हुआ आज भी है, यू आर माई हैंड्स। सुबह की साकार मुरली, तुम कौन हो? राइट हैंड। अर्थात राइटियस कार्य करने वाले। राइटियस ये शब्द बाइबल से आया है और शायद किसी लिटरेचर में ये शब्द नहीं। दे दैट आर द वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, दे डू अनराइटियस टास्क्स एंड दोज हु बिलोंग टू मी दे डू राइटियस टास्क्स। जो मेरे हैं, जिन्होंने अपना जीवन मेरे प्रति अर्पित किया है, वो केवल वही कार्य करते हैं जो सच, जो सच है, जो ट्रुथ है, जो राइटियस है। और जो मेरे नहीं, जो मेरे विपरीत है और मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, वो पाप कर्म करने वाले, द वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, दे डू अनराइटियस टास्क्स। तो आज की मुरली में एक शब्द आया है जो बहुत कम आता है, हर एक की बुद्धि के लिए बाप ने डैश जैसी सौगात लाई है। कौन सी? कस्तूरी, मस्क डियर, उसी के नाभि में वो सुगंध है। परंतु वो हिरन भटकता है, घूमता है, ढूंढता है, कभी झरनों के पास जाता है तो कभी पहाड़ों पर जाता है, तो कभी नदी के पास जाता है, कभी समंदर के पास जाता है। वो ढूंढता है ये सुगंध आ कहाँ से रही है। द स्टोरी ऑफ मस्क डियर, वो कस्तूरी मृग भटकता रहता है, भटकता रहता है 24 घंटे, एक सुगंध, एक अप्रतिम अनूठी सुगंध उसके चारों ओर है, पर वो आ कहीं कहाँ से रही है, उसका स्रोत कहाँ है, वो ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है, भटकते रहता है, ढूंढते रहता है। और एक दिन एक चट्टान से टकराता है और लहूलुहान होकर नीचे गिरता है और उसकी नाभि भी आहत हो जाती है और मृत्यु से पहले वो जानता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही था। आज की मुरली के वाक्य, अब आत्म अभिमानी बनो। तो सबसे बड़ी साधना ही यही है, मैं आत्मा हूँ। साधना कौन सी है? मैं आत्मा हूँ। बैठे, उठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, बार बार यही स्मरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग। चाहे मौसम कैसा भी हो, मन का मौसम कैसा है, द क्लाइमेट ऑफ द माइंड, एक रस और स्वयं पर केंद्रित इस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे तो अपने आप जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर आएंगे अपने आप। किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं, आत्मा में सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए आज दिन भर एक ही साधना करेंगे। कौन सी साधना? मैं आत्मा हूँ। कितनी बार करेंगे? कितनी बार? निरंतर ये आंसर नहीं देना है। निरंतर अर्थात जीरो। कितनी बार? 500। कितनी बार? बस 500। 2000। कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे? हाँ, 11 टाइम्स बस, मैं आत्मा हूं कितनी बार करेंगे? 108 बार। हर श्वास के साथ 16,000 जन जन का आत्म देह अभिमान ठूस ठूस के भरा है। तो साधना कितनी अधिक होनी चाहिए, और साधना ये एक ही है, मैं आत्मा हूँ। ये ऐसी रिंग ले लेनी है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो रिकॉर्ड रहेगा कितनी बार कर रहे हैं। ये हमारे सुखदेव भाई की रिंग है, उनका 500 बार हो गया है सुबह से। हाँ, किसका है? अच्छा, दीदी का है। ओके, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नीचे रख देना है ताकि किसी को पता ना चले। आज कहा ना, गुप्त मेहनत, मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब कुछ करते, क्लास सुनते मुरली सुनते सड़क पर चलते बस में बैठते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। निरंतर साधना, पाप निरंतर किए हैं तो पुण्य भी निरंतर करने होंगे। पाप कैसे किए हैं? निरंतर पूर्ण लगन से पाप किए हैं, तीव्र पाप किए हैं, दिन रात किए हैं। किसी मुरली में कहा है, जब जब तुम देह को देखते हो तो पाप होता है। अब पुण्य को बढ़ाना है, और सबसे बड़ा पुण्य है मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति से जो कुछ होगा वो सब पुण्य ही पुण्य होगा। मैं देह हूँ यदि सभी दुखों का कारण है और गिरने का कारण है, तो मैं आत्मा हूँ सभी सुखों का कारण है और उत्थान का कारण है। इसलिए साधना एक ही है, आत्माभिमानी स्थिति। तो आज के इस सत्र में हम आत्मा की 14 स्थितियों की चर्चा करेंगे। मुरलियों में बहुत सारी स्थितियों को समान माना गया है, परंतु कुछ कुछ मुरलियों में उनका सूक्ष्म अंतर बताया गया है। उसमें से किसी और, ये सभी स्थितियां देहभान से परे वाली स्थितियां हैं, इसलिए बहुत पावरफुल स्टेजेस है। तो सब अपनी डायरियां भी खोल के रखना है, और जब भी कुछ सुनो तो जैसे हमेशा कहा जाता है, 3 बातें एक साथ चलती रहे, सुनना, लिखना और योग। केवल सुनेंगे तो वो भक्ति मार्ग है, सुना और गया। आदत किसको किसकी डालनी है? सुनते सुनते लिखने की, और लिखते लिखते सुनने की, और सुनते सुनते योग करने की, और योग करते करते लिखने की, और लिखते लिखते सुनने की, और सुनते सुनते लिखने की। समझ में आ गया ना? अच्छी आदत है ना, सुनते सुनते लिखना, और लिखते लिखते योग करना, और योग करते करते सुनना, और सुनते सुनते लिखना। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट एंड सिंगिंग एवर सोरेस्ट। कभी अपनी हाँ, आप लिखना है, आप सुनो। एक बार हमने माताओं की क्लास कराई थी, क्लास पूरा होने के बाद पता चला आधी माताओं को सुनाई नहीं देता। और उससे भी आगे फिर बाद में पता चला आधी माताओं को तो हिंदी समझ में नहीं आता। उड़ते उड़ते गाते हो और गाते गाते उड़ते हो। पर सीबीसी शैली अपनी कविता में पक्षी से कहता है कि तुम कैसे पक्षी हो, कैसे उड़ रहे हो ऊपर और ऊपर और ऊपर। व्हाट थाउ आर्ट वी नो नॉट, व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, फ्रॉम द रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, एज फ्रॉम thy प्रेजेंस शावर्स द रेन ऑफ मेलेडी। तुम क्या हो मुझे पता नहीं, पर तुम, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मुख से जो मधुर ध्वनि निकल रही है वो तो जैसे अमृत की बूंदे है। तुम उड़ते हो और गाते हो और गाते गाते उड़ते हो, वैसे लिखते लिखते सुनना है और सुनते सुनते लिखना है और योग भी करना है। तीनों कार्य एक साथ चालू रहे ताकि बुद्धि को कहीं भटकने का चांस ही ना मिले। सबसे पहली स्थिति है अशरीरी स्थिति, पहले लिख लेते हैं। दूसरी स्थिति है आत्माभिमानी स्थिति। तीसरी स्थिति है अव्यक्त स्थिति। चौथी स्थिति है बीज रूप स्थिति। पांचवी स्थिति है कंबाइंड स्थिति। अगली स्थिति है देही अभिमानी स्थिति। नेक्स्ट विदेही स्थिति। अगला फरिश्ता स्थिति। लिख लिया? क्या क्या लिखा? अशरीरी, आत्माभिमानी, अव्यक्त, बीज रूप, कंबाइंड, देही अभिमानी, विदेही और फरिश्ता। कितने हो गए? आठ। अभी इन आठ स्थितियों को जो लिखा, इनको इतनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखो कि एक लाइन में आठ आ जाए। इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग में लिखना है, एकदम माइक्रोस्कोपिक, कि एक लाइन में आठों स्थितियां आ जाए, एकदम छोटा। जितना छोटा लिख सके उतना छोटा, अपने मुंह को पूरा घुसा दो बुक के अंदर तो लिख पाएंगे, ऐसे दूर से नहीं लिख सकेंगे। एकदम छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग, एक ही लाइन में आठों आ जाए। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं देना चाहिए, इतना छोटा लिखो, एकदम बारीक बारीक, जैसे चीटियां चल रही है, इतना बारीक। तो जब माइक्रोस्कोपिक लिखा तो क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? अटेंशन बढ़ गया और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहली स्थिति कौन सी है? अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था अर्थात वो अवस्था जो शरीर के बिना है, अर्थात परमधाम की अवस्था। अशरीरी अवस्था कौन सी है? मैं आत्मा शांति धाम में हूँ, मैं आत्मा मूल वतन में हूँ, जहाँ पर शरीर है ही नहीं, वो चेतना की अवस्था। दूसरी अवस्था है आत्माभिमानी अवस्था, जिसमें आत्मा के सातों गुणों का चिंतन हो रहा है, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद। जब हम आत्मा के गुणों का, इन सात गुणों का चिंतन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आत्म अभिमानी स्थिति। बैठकर चिंतन करते रहना है आत्मा के विषय में। आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। जो अभी अभी बहन जी कह रहे थे, राधा दीदी ये मेरा स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव है, ये मेरे संस्कार है, ये सब मूल संस्कार नहीं है, ये द्वापर से बनाए हुए संस्कार है, थोपे हुए संस्कार है, डाले हुए संस्कार है, आउटसाइडर्स है, ये आक्रांता है, घुसपैठी है, अंदर घुस गए, वो उसके ओरिजिनल नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कहो क्रोध करो, 24 घंटे क्रोध कर सकता है क्या? नहीं। परंतु क्या क्रोधित 24 घंटे शांत रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। 24 घंटे कोई द्वेष ईर्ष्या में जल सकता है? एक पल तो आएगा ही, वो थोड़ा सा शांत होगा। परंतु यदि किसी का स्वभाव ही, जैसे परमात्मा का स्वभाव प्रेम है, यदि भगवान के सामने कोई गन लेकर खड़े हो जाए मारने के लिए, तो वो उसको क्या कहेगा? मीठे बच्चे। क्योंकि उसका स्वभाव प्रेम है। छल कपट करना हमारा स्वभाव है क्या? छल कपट छल कपट छल कपट करके शांति से रह सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची है, छोटा बच्चा जो है उसके पास कंचे है, और जो बच्ची है उसके पास मिठाई। वो बच्चा कहता है तुम मुझे अपनी मिठाई दे दो, मैं तुम्हें अपने कंचे देता हूँ। वो बच्ची बहुत भोली है, वो अपनी सारी मिठाई या बच्चे को दे देती है, उस लड़के को, और लड़का सोचता है मैं अपने कंचे इसको सारे क्यों दूँ, सब थोड़ी दूंगा मैं। वो कुछ कंचे देता है, कुछ रखता है। वो बच्ची जाती है, आराम से सो जाती है। बच्चा नहीं सो सकता, क्योंकि वो देखता है मेरे कंचे हैं या चले गए, हैं या चले गए, हैं या चले गए। छल कपट छल कपट छल कपट करने वाले सो नहीं सकते, क्योंकि छल कपट हमारा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव सरलता, दिव्यता। रामायण में दिखाते हैं, श्री राम विश्वामित्र के साथ जाते हैं, विश्वामित्र कहते हैं जाओ जाकर फूल तोड़ के लाओ। राम वन में जाते हैं, सीता को देखते हैं और देखते रहते हैं, और सीता भी राम को देखती रहती है। अब ये इतनी प्राइवेट बात है, एक्सट्रीमली प्राइवेट, पर ये श्री राम जी जाते और अपने गुरु को सब बताते हैं कि एक कन्या थी, वो मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखती रही। ऐसी बातें कोई शेयर करता है क्या, वो भी गुरु के साथ? तुलसीदास ने लिखा है सरल स्वभाव छुवत छल नाही। राम का स्वभाव कैसा है? सरल स्वभाव है, उसको छल छूता तक नहीं, छल कपट से वो दूर है। और जो भगवान का स्वभाव है वही हमारा भी स्वभाव है, वो निर्मलता का सागर है, वो सादगी का सागर है। तो जब आत्मा स्वयं के चिंतन में रहती है, स्वयं के गुणों के चिंतन में रहती है, प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप, तो अपने आप उसमें पवित्रता प्रकट होती है। पवित्रता ब्रह्मचर्य संघर्ष ना हो, यहाँ यदि वो संघर्ष बनता है तो फिर अपवित्रता की जीत होगी, काम की जीत होगी। यदि हम लड़ाई करते हैं वो क्या बन जाए? हमारा स्वभाव। तो आत्माभिमानी स्थिति अर्थात बैठकर चिंतन करना, मेरा स्वभाव क्या है? प्रेम। मेरा स्वभाव क्या है? शांति। आत्मा के 9 खजाने हैं। कौन कौन से? कोई एक व्यक्ति गिनाए सारे 9। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को सीता माँ ने क्या दिया? वरदान। कितनी? अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ। तो ज्ञान की नौ निधियां हैं, नौ खजाने, कौन से, कौन बताएगा? अरे बताओ, पता सबको है। हाँ, सामना करने की शक्ति नहीं, वो अष्ट शक्तियां हैं। हम बातें कर रहे खजानों की, नौ खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, संकल्प, दुआ, समय, कर्म, श्वास और समय एक ही है, संतुष्टता, खुशी, नौ हो गए। पहला ज्ञान, दूसरा गुण, तीसरा शक्तियाँ, चौथा समय, पांचवा संकल्प, छठवा खुशी, संतुष्टता, और नौवा, आठवा दुआएं, और नौवा कर्म, श्रेष्ठ कर्म। तो ये कितने खजाने हुए? नौ। इन सभी नौ खजानों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान। अच्छा, पर ज्ञानियों के पास तो बड़ा घमंड होता है। दुआएं, तो पवित्रता, संतुष्टता, और संकल्प, फिर समय, खुशी, पवित्रता, गुण, कौन सा, और कौन सा बच्चा है? हाँ, कौन सा, कर्म, और श्वास, समय एक ही है। संतुष्टता में सब आ जाता, और पवित्रता में सब नहीं आता, और फिर संकल्प में सब नहीं आता, और फिर दुआएं में भी तो सब आता है, और फिर खुशी में भी तो सब आता है। इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते और आगे बढ़ते हैं। हम बताएंगे आगे। तो दूसरी अवस्था कौन सी है? आत्म अभिमानी स्थिति। तीसरी अवस्था अव्यक्त स्थिति। दो शब्द मुरलियों में आते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अंग्रेजी में व्यक्त और अव्यक्त के लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मुरलियों में जो आता है मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। व्यक्त अर्थात जो व्यक्त है, जो दृश्यमान है, जो गोचर है। अव्यक्त अर्थात जो दिखाई नहीं देता है, जो अव्यक्त है। परंतु उसका स्थूल अर्थ में गिना जाए तो अव्यक्त अर्थात एक मौन की स्थिति है, जिसमें हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, साउंड नहीं है। द साउंडलेस स्टेज, द मूवमेंटलेस स्टेज, द मोशनलेस स्टेज इज द अव्यक्त स्टेज, दैट विच इज अनमैनिफेस्ट, इनविजिबल है, इम्पाल्पेबल है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको फील नहीं किया जा सकता, दैट विच इज इनटेंजिबल, दैट इज अव्यक्त। और यदि प्रैक्टिकल पूछा जाए तो अव्यक्त स्थिति अर्थात जब कोई मौन में है और स्थिर बैठा हुआ है, उसे इच्छा ही नहीं है नीचे आओ, कुछ बोलूं, कुछ हलचल करूं, कुछ आवाज़ करूं, हाथ पैर हिलाऊं, कुछ भी नहीं। जैसे अव्यक्त बाप दादा, जिन्होंने बाप दादा, जो बाप दादा से मिले होंगे, उन्होंने देखा कि बाबा की हलचल बहुत कम रहती है। इधर हाथ हिलाऊं, उधर हाथ हिलाऊं, इधर खुजली करूं, ये इसको ठीक करूं, ये उसको ठीक करूं, शॉल को ठीक करूं, ये सब कुछ नहीं करते। ये मक्खी आई तो मक्खी को हटाऊं, यहाँ से आंसू आए तो उसको ठीक करूं, ये सब दूसरे करते हैं, वो नहीं करता है। वो अव्यक्त स्थिति है जिसमें चेतना मौन में है, अचल है, स्थिर है, और एक अदृश्य स्थिति में है। वो इस दुनिया की अगर स्थिति में अव्यक्त अगर बताया जाए तो उसमें साइलेंस एंड मोशनलेसनेस, ये दो बातें आएगी। तो ये हो गई तीन स्थितियां। चौथी है बीज रूप। बीज रूप स्थिति परमधाम की स्थिति है कि मैं आत्मा बीज रूप में कहाँ हूँ, परमधाम में हूँ, अपने घर में हूँ। उसका अनुभव यहाँ भी कर सकते हैं कि मैं आत्मा बीज हूँ, पर अधिकतर अनुभव परमधाम का। बीज रूप ज्वालामुखी योग, पॉइंट ऑफ लाइट परमधाम में। अशरीरी एक सिंपल स्टेज है जिसमें आत्मा परमधाम में है, वहाँ शरीर नहीं ये भाव। बीज रूप में फोकस इज ऑन द पॉइंट ऑफ लाइट और टोटल कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज है, और वो जैसे परमात्मा से जुड़ी तो नहीं है पर उससे फोकस्ड है और किरणें ले रही है। और बीज रूप इस संसार की भी स्थिति है, अशरीरी इस संसार की स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ शरीर है। बीज रूप हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, मैं बीज रूप हूँ, इमेजिन तो कुछ भी किया जा सकता है, परंतु बीज रूप स्थिति इज ज्वालामुखी योग, बीज रूप स्थिति इज वोल्केनिक योगा, बीज रूप स्थिति इज सीड स्टेज, इट इज द स्टेट ऑफ 100% कॉन्सेंट्रेशन। अशरीरी में मैं परमधाम में हूँ, शरीर नहीं है, बस ये हल्का संकल्प है, परमधाम में हूँ और कोई शरीर नहीं है वहाँ पे, शरीर की कोई हलचल नहीं, शरीर का कोई आवाज़ नहीं, शरीर की कोई इच्छा नहीं, शरीर का कोई आकर्षण नहीं, शरीर को कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भोग नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं। शरीर से संबंधित जो कुछ है, शरीर की कोई बीमारी नहीं, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, वो चेतना की अवस्था। तो चौथी अवस्था कौन सी है? बीज। अमृत वेला, इसी का अभ्यास अधिक करना है। अगली अवस्था है कंबाइंड। कंबाइंड परमधाम की भी अवस्था है, सूक्ष्म वतन की भी हो सकती है और इस दुनिया की भी हो सकती है। सबसे पहला तो परमधाम की, मैं और वो दोनों एक है, माई फादर एंड आई आर वन, हम दोनों एक ही है, अलग नहीं है। नदी और सागर एक हो गए हैं, जो जो उसमें है वो सब मुझ में है, ये अनुभव। एक कंबाइंड संयुक्त स्टेज। इसका अनुभव या सूक्ष्म वतन में मैं बाप दादा के साथ हूँ, मिला हुआ हूँ, या यहाँ पर भी बाबा मेरे साथ है, मुझ मेरे साथ कंबाइंड है, परंतु एक्सपीरियंस के लिए परमधाम। उसके बाद में अगली स्थिति कौन सी है? देही अभिमानी स्थिति। अब इसमें दो चीज़ें हैं, शरीर, देह और देही। ये भान कि देह में रहने वाली मैं देही आत्मा हूँ, दो चीज़ों का भान है, शरीर भी है और साथ में आत्मा, देह और देही, घर और घर का मालिक, ये दो चीज़ें हैं। मैं घर का मालिक हूँ, इस देह में हूँ, मैं देही आत्मा हूँ, इस देह में हूँ। दिस स्टेज इज कॉल्ड देही अभिमानी स्थिति। अगली है विदेही स्थिति। अभी ये क्या है? अभी कन्फ्यूजन थोड़ा सा ठीक है ना अभी तक का, और कन्फ्यूज बढ़ रहा है। विदेही स्थिति कर्मयोग की स्थिति है, कर्म करते हुए डिटैच्ड, कर्म करते हुए उस कर्म का कोई भी बंधन नहीं, कोई लेपछेप नहीं, कर्म और कर्म के परिणाम दोनों से डिटैच्ड है। ब्रह्मा के लिए यह स्थिति के लिए कहा गया है, जनक विदेही जनक सारे कर्म कर रहा है, संसार के सारे कर्म चालू है, परंतु वह कर्म उसे टच नहीं करते। कर्म है, कर्ता गायब है, दिस इज विदेही। सेवा की और सेवा करने के बाद कर्ता गायब, हमें पता ही नहीं, अपने आप हुआ, जिसको कराना था वो करा के चला गया, इसमें हमारी महिमा है ही नहीं कुछ भी। जैसे सिंहासन बत्तीसी सुना है सबने, किसकी कहानी है? राजा भोज सुनता है कि एक चरवाहा है, वो ऐसे ऐसे निर्णय देता है ज़बरदस्त। वो साधारण सा चरवाहा, राजा को आश्चर्य होता है, जाकर देखता है तो वो चरवाहा एक टीले पर जाकर बैठता है और वहाँ पर कठिन कठिन परिस्थितियों के बड़े अच्छे और सही सटीक उत्तर देता है। राजा को आश्चर्य होता है, उस चरवाहा से मिलने जाता है राजा, वेश बदल कर आता है छद्म वेश धारण करके, और पता चलता है ये चरवाहा तो एकदम ही साधारण है, एकदम बुद्धू मूर्ख है ये, पर यह असामान्य बुद्धिमत्ता उसमें कहाँ से प्रकट हो जाती है। तो देखता है राजा, जब वो उस टीले के ऊपर जाता है तब वो प्रकट होती है, अर्थात वो जो पहाड़ है छोटा उसमें कुछ तो है, और राजा भोज उसको खुदवाता है और खोदता है तो नीचे एक महल निकलता है जिसमें 32 पुतलियाँ होती है। राजा भोज को रखता है इतना सुंदर महल, इस पे तो मुझे ही बैठना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ। बैठने जाता है तो पहली पुतली जीवंत हो जाती है, कहती है रुको, ये पता है तुमको किसका सिंहासन है? ये विक्रमादित्य का सिंहासन है। मैं तुम्हें अभी विक्रमादित्य की जीवन की एक कहानी सुनाती हूँ, और वो एक कहानी सुनाती है और फिर वो कहानी इतनी प्रेरणादायक होती है और फिर राजा से कहती है, क्या तुम्हारे जीवन में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण है? भोज राजा कहता है ना, पीछे हट जाता है। दूसरे दिन फिर चढ़ने जाता है, फिर दूसरी पुतली जागृत होती है, फिर वो एक कहानी सुनाती है विक्रमादित्य की, क्या तुम्हारे जीवन में जैसे राजा विक्रमादित्य ने किया वैसा तुम कर सकते हो? वो कहता ना, मुझ में तो नहीं है। 32 सिंहासन, 32 इसको कहते हैं, उसमें 32 कहानियाँ, एक एक पुतली जीवंत तो होती है, और लास्ट पुतली जीवंत तो होती है, और फिर वो राजा भोज को एक कहानी फिर सुनाती है और फिर पूछती है, क्या तुम में राजा विक्रमादित्य का ये गुण है? वो कहता है नहीं है। पर वो पुतली उसको कहती है कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो, क्योंकि तुम में वो विनम्रता है, तुमने हर बार स्वीकार किया कि मुझ में ये गुण नहीं है, इसलिए इस सिंहासन पर तुम विराजमान हो। ऐसी ये कहानियाँ बचपन में सुनी होगी ना, 32 पुतलियों वाला सिंहासन 32। तो विदेही अवस्था, कर्म किए जा रहे पर डिटैच्ड, पुण्य किए जा रहे पर पुण्य हमें स्पर्श नहीं करते, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसका कोई प्रोपोगेंडा नहीं, हमारी सेवाएं प्रचार ना हो केवल, ये याद रखना है। कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारिया ट्रेन से जा रहे थे और वहाँ एक साध्वी बैठी थी, वो साध्वी ने पूछा तुम लोग क्या करते हो? तो वो लोगों ने चालू कर दिया बताना, हम ये करते हैं, हम प्रदर्शनी लगाते हैं, हम ऐसी सेवा करते हैं, हम वो करते हैं, हम भाषण देते हैं, हम लोगों को व्यसन मुक्ति का कराते हैं, हम ऐसा कराते हैं वैसा कराते हैं। तो उस साध्वी ने कहा ये सब तो प्रचार है, इसको सेवा क्यों कहते हो तुम लोग, ये तो प्रोपेगेंडा है, डोंट कॉल दिस सेवा, इसमें तो मैं की तृप्ति हो रही है, मैंने किया ये भाव है इसमें। वास्तविक सेवा में मैं गिर जाता है, उसमें मैं अदृश्य हो जाता है, मैं गायब, क्या वो सेवा है? तो वो अवस्था कौन सी है? विदेही। बोल रहे पर जैसे नहीं बोल रहे, सुन रहे पर नहीं सुन रहे, डिटैच्ड। अगली कौन सी बताई? फरिश्ता। आत्मा दो शरीरों में विराजमान, अर्थात फरिश्ता स्थिति, एक स्थूल एक सूक्ष्म, कि मैं फरिश्ता हूँ, ये यहाँ भी अनुभव किया जा सकता है। मैं आत्मा एक स्थूल शरीर है और एक लाइट का शरीर है, और जो लाइट का शरीर है ना तो स्त्री है ना पुरुष, वो वाइब्रेशंस का शरीर है, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, कैजुअल बॉडी, सटल बॉडी, इथेरियल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, अलग अलग नाम है उसके। एक सन्यासी पहाड़ों पर तपस्या करता है, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आता है, कहता है हमारे देश में चलो, बहुत सेवा होगी, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, देश में मटेरियलिज्म, भौतिकवाद बढ़ रहा है, आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो सन्यासी कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं क्यों आऊँ, मैं यहीं बैठ के तुम्हारे देश की सेवा कर रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर से मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही स्थान पर बैठकर पूरे विश्व का चक्कर लगाना, सूक्ष्म वतन चले जाना। तो वो कौन सी अवस्था है? फरिश्ता स्थिति।
एक्सक्यूज मी, किसी की 3254 गाड़ी कहीं ऐसी खड़ी है, वो प्रॉब्लम कर रही है, 3254 3254। थैंक यू।
तो कितनी अवस्थाएं हुई? 8। उसके बाद 3 और अवस्थाएं, साकारी, आकारी, निराकारी। एक है साकारी अवस्था, अर्थात ये शरीर सहित अभी जो अवस्था है और जिसमें हम हैं, ये साकारी शरीर है, इसमें मैं हूँ, कर्म कर रहे हैं, देहभान में भी आ रहे हैं। उस दिन साकार मुरली में था कि देहभान आवश्यक है कर्म करने के लिए, कुछ दिन पहले साकार मुरली में था, अगर देह ही नहीं रहा तो कर्म नहीं कर पाएंगे। दिनचर्या के जो कर्म हैं, फिर है आकारी, आकारी अर्थात सूक्ष्म वतन। फरिश्ता स्थिति कहीं पे भी हो सकती है, आकारी ओनली इन सूक्ष्म वतन। और फिर है निराकार, परमधाम ओनली, कि मैं आत्मा निराकार हूं। उसके बाद में 2 और अवस्थाएं हैं, देवता और पूज्य स्वरूप। सतयुग की कौन सी अवस्था? देवता। देवताओं में कौन कौन से गुण हैं? देवताओं का वर्णन क्या क्या है? कम से कम 14 बातें बताओ। 1, 16 कला संपूर्ण, दूसरा सर्वगुण संपन्न, एक हो गया कला का, एक हो गया गुण का, तीसरा निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, उसके बाद डबल ताजधारी, और डबल ताजधारी, ठीक है, और हर्षित, और सर्वगुण में आ गया हर्षित मुक्त। देही अभिमानी कहा जा सकता है? है, वो देही अभिमानी है, दे आर सोल कॉन्शियस, उन्हें पता नहीं है, नेचुरली सोल कॉन्शियस है, विजन भी उनकी सोल कॉन्शियस है, और इच्छा मात्रम अविद्या संगम युग की स्टेज है, ब्राह्मणों की अवस्थाओं का गायन है, देवताओं के लिए नहीं। और हो गया सर्वांग सुंदर, हाँ अत्यंत सुंदर है वो। कौन ज्यादा सुंदर है, लक्ष्मी या नारायण? नहीं, एक बताओ, लक्ष्मी और क्या? रमणीक, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस संगम युग का है। परोपकार, किस पर परोपकार, कोई दुखी है क्या वहां, किस पर परोपकार करेंगे? ये होमवर्क, निश्चिंत, निश्चिंत संगम युग का गायन है, तुम्हें बाप मिला है, तुम बेफिक्र बादशाह हो, संतुष्ट, संतुष्टता संगम युग है, तुम हो संतुष्ट मणिया, देवताओं का गायन नहीं है संतुष्ट। एक रस संगम युग की स्थिति का नाम है, एक रस, कंचन, हाँ कंचन काया, ये राइट है, निकल गया ना। तो जब हम चिंतन करते हैं तो क्या निकलता है, डिस्कशन से मक्खन निकलता है, कंचन काया। अभी अभी कुछ दिनों पहले मुरली में एक शरीर के लिए एक शब्द आया था जो तुम्हारा शरीर बन जाएगा, काया कल्पतरु। अभी अभी साकार मुरली थी ना एक, काया कल्पतरु। और क्या, निरोगी काया, कंचन काया, काया कल्पतरु, ये एक पॉइंट है। मर्यादा पुरुषोत्तम हो चुका है। सूर्यवंशी, अच्छा ये उनका नाम हो गया। दाता, वो संगम युग में गायन किया जाता है देवताओं का कि वो दाता है। और मधुर, तो मधुरता गुण में आ गया, वो गुण हमने बोल दिया ऑलरेडी, सर्वगुण संपन्न, तो उसमें सारा आ गया। हाँ दिव्य दर्शनीय मूर्त, दर्शनीय मूर्त वो पूज्य स्वरूप का गायन है, या संगम युग में तुम्हें दर्शनीय मूर्त बनना है। हाँ क्या क्या, अमर ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, कैन बी एडजस्टेड। पावन हो गया, निर्विकारी पावन। प्रकृति जीत, मायापति प्रकृतिपति, ये संगम युगी अवस्थाओं का गायन है। प्रकृति जीत सब कुछ, सतो प्रधान, यस देवता कैसे हैं, सतो प्रधान, ये एक्सेप्टेबल पॉइंट है। अच्छा लडोल, अजर अमर अविनाशी, अमर अच्छा ठीक है। कितना दिन पहले पता चल जाता है देवताओं को कि हम मरने वाले, नहीं देवताओं को एक हफ्ता। अब ये पूछो मत कैसे लाया। मन मत। पर एक हफ्ता है। तो कहाँ थे हम, देवता स्वरूप। अगला है पूज्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप अर्थात द्वापर से जो हमारे मंदिर बनेंगे उसमें सारे देवियाँ, सारा जो भी होता है उन सब का कौन सा गायन है। पहला संहारी मूर्त, दर्शनीय मूर्त, भक्तवत्सल। देवी, देवियाँ कैसी होती है, देवियाओं को अपने सामने लाओ। एक देवी है कैसी होती है, वो दुर्गा काली सरस्वती कैसी होती है, वरदानी होती है, वरदानी। दर्शनीय मूर्त, भक्तवत्सल, संहारी मूर्त, संघारी मूर्त और प्रेममयी, कल्याणकारी, ममतामयी होती है वो। वो जगन माता होती है, जगत की माँ होती है, शक्ति रूप होती है वो। और आकर्षण मूर्त होती है, दर्शनीय मूर्त होती है और उद्धारक होती है, उद्धारक। वो असुर संहारिणी होती है, कल्याणी होती है, जगत माता होती है, जगत धात्री, जगन माता होती है। और अन्नपूर्णा होती है। तो सभी बहने देवियों का चित्र बनाएंगे और भाई देव का चित्र बनाएंगे। पूज्य स्वरूप में भाइयों की तरफ है हनुमान, गणेश, शंकर, नारायण। तो इनमें से किसी का भी चित्र बनाओ, हनुमान जी का बना लो ठीक है। और इधर बनाएंगे दुर्गा का चित्र बनाओ, सबको बनाना है। दुर्गा बनाते बनाते काली भी बन गई तो चलेगा, कुछ भी बनाओ, पर हाथों को ड्राइंग बनाने की आदत चाहिए ठीक है। बनाओ अभी तुरंत नाओ, अच्छा बनाना दुर्गा देवी का, कठिन काम है थोड़ा दुर्गा देवी। हनुमान जी तो आसान है थोड़ा, हनुमान जी का चित्र आसान है। और नीचे लिखेंगे मैं महावीर हूँ, और इधर लिखेंगे मैं शिव की शक्ति हूँ। सभी चित्र बनाएंगे। बन गया क्या? बना? हनुमान जी बने, अतुलित बल धामा, कुमति निवार सुमति के संगी, राम काज करिबे को आतुर, राम रसायन जिनके पास। बना क्या? अपने ही हाथों से अपना ही चित्र बनाना है। तत्वमसी ये मैं हूं। तो कहां थे हम? पूज्य स्वरूप। कितनी हो गई टोटल अवस्थाएं? 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले 8, फिर 3, फिर 2, और अभी एक लास्ट अवस्था है। इस अवस्था के कई सारे नाम हैं। संगम युग की अंतिम अवस्था का क्या नाम है? कर्मातीत, संपूर्ण, संपन्न, समीप, व्यर्थ से मुक्त, जो कुछ सोच सकते हैं। लास्ट संडे की मुरली, मन जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, ये सारी अवस्था। एक रस, बाप समान, अचल अडोल, ये सभी अवस्थाएं। नष्टो मोहा, इच्छा मात्रम अविद्या, ये सब। मुझे एक बॉल की आवश्यकता है। बॉल है कुछ ऐसे, बॉल या जो एक के पास से दूसरे के पास जा सके, बॉल या कुछ तकिया, तकिया भी चलेगी, हल्की थोड़ी सी, इस टाइप की, थोड़ी हल्की, थोड़ी छोटी, गोल या कुछ। तो कितनी अवस्थाएं हो गई? 14 अवस्थाएं। अभी एक बार आंखें बंद करेंगे और माइंड में इसको रिवाइज करेंगे। ए से 3 है, बी से 1 है, सी से 1 है, डी से 1 है, ई से विदेही है, और एफ से फरिश्ता। ये 8, ए बी सी डी ई एफ, 6 लेटर है, पर अवस्थाएं कितनी है? 8। और उसके बाद में साकारी, आकारी, निराकारी, उसके बाद में देवता, पूज्य, और लास्ट संगम युग। तो सभी आंखें बंद करके बैठेंगे और एक बार मन में रिवाइज करेंगे ये। हाँ, ये सही है। नहीं, हमारे पास नहीं लाना है, ये आप उधर दे दो, ये पहली बहन जी के पास, इधर इधर इधर, फर्स्ट फर्स्ट। हाँ, आंखें खोलेंगे सभी। तो अभी म्यूजिक चलेगा कोई भी एक, और ये जो बॉल है ये आप एक दूसरे को पास करते जाना है, और म्यूजिक वाले बीच में कभी भी बजा देना, हम नहीं बजाएंगे, नहीं तो वो बायस्ड हो जाएगा कि हम इनको देख के बजाएंगे, हाँ अब रोको, ये नहीं, आपके अपने हिसाब से बजाना है। आपको क्या करना है? बॉल पास पास करते जाना, पहले यहाँ आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे, पहले बहनों की तरफ घूमेगा। स्टार्ट, म्यूजिक बजेगा उसके बाद, और जल्दी जल्दी म्यूजिक बंद करना है। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग म्यूजिक, फास्ट म्यूजिक, फास्ट फास्ट फास्ट, पीछे स्टॉप। किसके पास आया है? तो आपको इधर आना है। अब वो बॉल दे दो बाजू में, आपको इधर आना है। जिसके पास भी आया है, ये अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। तो आपको हम एक स्थिति देंगे, उसका आपको वर्णन करके बताना है। फरिश्ता स्थिति कैसे करता है फरिश्ता, वो आपको हैंड से बताना है, हैंड जेस्चर से बताना है फरिश्ता कैसे करेगा। फरिश्ता, फरिश्ता कुछ भी करो, पर फरिश्ता स्थिति बनानी है। लंबी लंबी सांस, फरिश्ता प्राणायाम, डूइंग प्राणायाम। गेम आगे बढ़ाओ, म्यूजिक आगे। माइक माइक भी चाहिए एक। तो आपको एक परिस्थिति दे रहे हैं कि आपका अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होता है, ठीक है। और आज अमृत वेला अचानक मिस हो गया है, आँख खुली और जल्दी भी सोए थे 8 बजे, पर आँख खुली तो देखा 5 बज रहे। अभी आप क्या करोगे? आँख खुली देखा 5 बज रहे, व्हाट यू विल डू नाउ? यह है परिस्थिति।
बाबा आज अमृत वेला लेट हो गया, लेकिन
लेट नहीं मिस
मिस हो गया बाबा, लेकिन आप सारे दिन मेरे साथ रहना और एक एक सेकंड के लिए भी मैं आपको भूलूं नहीं, और जो भी अमृत वेला जो स्थिति होती है वो सारे दिन मेरी स्थिति आप बनाए रखना, मैं पूरे दिन आपका हाथ पकड़ के चलूँगी।
कोई एडिशन करना चाहेगा? गुड मॉर्निंग बाबा एक, और सॉरी बाबा, और ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करेंगे, और आपने जगाया क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों करते हो, बहुत खराब हो। क्या कहेंगे और? हाँ किसको सुख शांति की वाइब्रेशन, खुद को? अच्छा पूरे वर्ल्ड को, वो तो रोज देते ही, पर टाइम तो चला गया ना आज तो। तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अपना ही बाप है।
कोई बात नहीं, अगर टाइम चला
गया कोई बात नहीं, ठीक है,
तो हम आगे के लिए प्रयत्न करेंगे कि अगर उस समय समय है तो हम बाबा को याद कर लेंगे।
और क्या करेंगे?
आगे के लिए निश्चय करेंगे कि हम जो भी पूरे दिन की स्थिति रही अगर किस वजह से मिस हुआ उस पर ध्यान देंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों मिस हुआ है? शायद हो सकता है बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी और थकान थी, उस थकान, क्योंकि नींद अपना मार्ग खुद ढूंढ लेती है, तो हो सकता है वो एक कारण बना, या फिर व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे थे पूरे दिन भर, या तो खाना, जैसे अभी कहा कि जल्दी सो गए थे पर ज़्यादा ही खा लिया होगा, थोड़ा यहाँ तक भर के इतना स्वादिष्ट बना, क्या करे, तो नींद अच्छी आ गई एकदम, या फिर मौसम ऐसी रिमझिम रिमझिम बारिश, आहा कितना अच्छा लगता है, ऐसा ओढ़ के ले लो और अलार्म बजता है तो उसको ऐसे बंद कर दो, ठीक है मैं 5 मिनट बाद उठता हूँ, म्यूजिक स्टार्ट, गेम आगे। डर के मारे आगे आगे भेज रहे, खड़े हो जाएंगे। आपके लिए एक परिस्थिति हम दे रहे हैं, तो आप सेंटर पर हैं और एक ही माता है सेंटर पर, और बहन जी ने कहा अचानक मधुबन से 20 लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए आपको भोजन बनाना है, और जो छोटी बहनें हैं वो गई है मधुबन, तो आप एक माता है और आपके साथ एक कन्या है, बस इतने ही लोग हैं, तो आप 20 लोगों का, ये आपको बताया है दोपहर को, और वो लोग आने वाले हैं रात को 8 बजे, आप कैसे प्लान करोगे? टाइम बहुत कम है आपके पास, आपको 3 बजे बताया गया है कि माता जल्दी आ जाओ, आपको जाने को भी थोड़ा टाइम लगेगा अभी सेंटर पर, आपको करना है ये सब, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जो भी करना है कि मैं बिजी हूँ अभी नहीं आ सकती, यहाँ से लेकर तो मैं तुरंत पहुँच रही हूँ, और कैसे करना है वो आप बताएंगे, और बाकी लोग मदद करो,
मैं
उनको मदद,
मैं बाबा का साथ लूँगी।
क्या क्या क्या?
मैं बाबा का हाथ पकड़ के कहूँगी बाबा आपको करना है मेरे साथ,
हाँ।
और फटाफट मुझे शक्ति दीजिए और मुझे बुद्धि दीजिए, मैं जल्दी से काम निपटाऊँ।
एक तो ये हो गया, पर ये बोलने से तो होगा नहीं ना। ये तो बहुत अच्छा कर दिया, पर अभी आगे क्या करना है? मेनू सिलेक्ट करेंगे, वेरी गुड, उनको बताना है, मुझे नहीं, उनको बताओ, वो माइक उनके हाथ में है,
मेनू डिसाइड करना है जी,
क्या करेंगे?
पहले तो मैं सोचूंगी कि क्या मैं फटाफट बनाऊंगी भोजन,
हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज है जो फटाफट बन सकती, एक ही है, और
पूड़ी हलवा जल्दी
वो
से
हो गया, अभी उसके नाम मत गिनाओ
जी।
वो हो गया मेन्यू डिसाइड। आगे और उधर बताओ, उधर क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास।
पहले चेक करूंगी कि घर में क्या क्या सामान है,
हाँ,
जो नहीं है वो जल्दी जल्दी मंगवाऊंगी।
मंगाने किससे मंगवाओगे?
ब्लिंकिट से।
ठीक है, नेक्स्ट आगे।
और मैं अधिक से अधिक मैं काम करूंगी और जो भी मेरे साथ हेल्पर हैं उनका साथ लेके मैं मतलब अधिक मैं काम करूंगी।
और
फिर भोग बैठाने का व्यवस्था करूंगी,
बैठाने का व्यवस्था करूंगी। भोग का क्या करेंगे?
और भोग लगाऊंगी, बाबा का भोग लगाऊंगी
और
बर्तन सब अरेंज करके सब रखूंगी मेहमान के आने से पहले, सारी व्यवस्था, फिर उनका वेलकम करूंगी।
20 लोग आ रहे हैं
जी, मैं उनका
और वो भी मधुबन से आ रहे हैं, ये याद रखना।
मैं उनका वेलकम करूंगी फूलों से और उनका स्वागत करूंगी और फिर बैठाऊंगी।
क्या बहुत थोड़ा खाते? अच्छा, या फिर ये बोल सकते हैं आप तो खाना खा के ही आए होंगे। हमने सुना है आप लोग उपवास कर रहे हो आजकल। फल से पेट नहीं भरेगा उनका। तो प्लानिंग करनी है, कोई भी चीज अचानक आती है तो उसमें क्या चाहिए? सबसे पहला बाबा की याद और तुरंत प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और समर्पण, ये सब चीजें होनी चाहिए। बैठ जाइए, बॉल आगे, म्यूजिक स्टार्ट। तो आपके सामने एक दूसरी परिस्थिति है। आपको बहन जी ने कहा है मधुबन जाना है पार्टी को लेकर, ठीक है, जिसमें 20 माताएं हैं, 20 माताओं को लेकर मधुबन जाना है और यहाँ से आप ट्रेन में बैठे, बीच में एक स्टेशन आता है जिसमें एक माता उतर जाती है, ठीक है, कुछ पानी पीने, और ट्रेन चालू हो जाती है और ट्रेन आगे, और आगे के स्टेशन में आप ढूंढते हो कि ये माता कहाँ चली गई और वो माता गायब है। अब क्या करोगे?
बाबा रे। बाबा को याद करना।
और वो माता वो वाली माता थी जो घर से झगड़ के आ रही थी, और वो वाली वो माता है कि जिसके घर वाले मना कर रहे थे फिर भी वो आ रही थी जबरदस्ती। अब उसके माँ उसके घर वाले पूरे एंटी है, विरोध में खड़े है, और ट्रेन अभी चालू है और अभी आबू रोड आने वाला है, वो माता कहाँ चली गई पता ही नहीं, गुम है पूरा, आप ढूंढ रहे हो सारी बूगी में, कहीं कुछ नहीं मिल रही, उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ। तो आप अभी आबू रोड पहुंचने वाले हैं ना, उनको सजेशन दो, हमें नहीं, उनको बताओ क्या करना है। क्या
सबसे पहला तो वही था कि बाबा को याद करके, हाँ, बाबा से कहेंगे,
ये
बाबा
सबसे इम्पोर्टेंट काम है।
उसके बाद फोन
वो छोड़
करते
के हम बाकी सब करते हैं,
फोन करते बट फोन आपने स्विच ऑफ करा दिया।
हमने नहीं किया, उस माता का।
क्योंकि और
करोगे क्या?
स्टेशन जो स्टेशन पे आप बता रहे हैं वहां पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे टीटी मास्टर के थ्रू।
कैसे, आपके पास नंबर है?
टीटी मास्टर के थ्रू बात करके कि उधर से कोई कांटेक्ट हो
तो उसको ढूंढेंगे और बात करेंगे। तो वो क्या करेगा फिर?
और उनके भी फोन का वेट कर सकते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करने।
वो माता अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता है, फोन करना नहीं आता है, बस हेलो वो करना आता है। उनको बताना है, उनको
अगले स्टेशन पे सूचना देना,
अगले स्टेशन पर सूचना देना एक,
और मधुबन में भी इन्फॉर्म करना कि ये माता इस स्टेशन पे रह गई है,
रह गई है, इन्फॉर्म करना। और
बाबा घर पहुंचा ही देगा, और हम
तो ठीक है, बाबा बैठा है वो पहुंचा देगा, और क्या, कुछ हाथ पैर भी तो हिलाने पड़ेंगे। और
स्टेशन से ही
हाँ 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 उसी में बैठ जाती है। ठीक है।
उन्हीं की ड्यूटी हो गई कि वो पहुंच जाएंगे।
पहुंच और क्या करोगे?
बाबा को थैंक यू बोलेंगे कि
नहीं,
बाबा आ
आप अभी
गई।
आबू रोड पहुंच गए, अब वहां पहुंच के क्या करोगे?
वहां तो वही हुआ ना कि जो
मात
अपने बीकेस का काउंटर है वहां पे जाके
हाँ
बताएंगे कि ये बहन इधर स्टेशन पे रह गई है, फिर बाबा के घर जाके बाबा को सौंप देंगे कि बाबा अब आप संभालो, मैं अब आपके
और कुछ एडिशन करना चाहते हैं?
पास आ गई।
स्थिति चेक करेंगे, स्थिर है या हलचल में आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, आप आबू रोड स्टेशन पहुँचे और फिर शांतिवन पहुँचे, और उत्तर यह है कि वो आपको, आपकी बस जैसे उतरी मो माता सामने खड़ी है। कैसे सामने खड़ी है? किसी और ट्रेन में किसी ने बिठा दिया उसको और वो आपसे पहले पहुँच गई, ये भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे? थैंक यू बाबा। तो अभी इसी खुशी में बैठ जाओ, म्यूजिक आगे। कौन आया? कौन आया? माता है? कौन है? हाँ, ये माता है। ठीक है। तो आपको देवता की एक्शन करके बतानी है, यही एक्शन है देवता की। देवता देवता की एक्शन करके बताओ, देवता कैसे करते हैं? चल के बताओ, देवताओं जैसा या कुछ करके बताओ। देवता की एक्शन समझ में आया उनको? उनकी भाषा में कोई दूसरी भाषा तो नहीं है कि हिंदी है? ये क्या है? ये तो वो हो गया, कोई बंदूक लेके खड़ा है सामने। देवता देवता, चल के बताओ जरा, देवता जैसा। हाँ ये है, ये सही है, ये देवी है। फोटो फोटो देख लो एक बार, और भी कुछ करो जरा। अरे कुछ और भी करो ना। हाँ ये ठीक है। ओके, बैठ जाएंगे। नेक्स्ट बॉल आगे, म्यूजिक स्टार्ट। किसके पास आया? तो मधुबन में आप पार्टी को लेके गए हैं, उसमें एक माता को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, और उस माता को आपने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा हालत सीरियस है, बड़ा हार्ट अटैक आया है, आपकी अगले दिन ट्रेन है जाने की, आपके साथ 50 की पार्टी है, पर ये माता का कोई भी नहीं है साथ में, और उसके सारे रिश्तेदार एंटी है और जो घर पे है। नाउ व्हाट यू विल डू? आवाज।
सबसे पहले तो बाबा को याद करेंगे,
हाँ कर
और
लिया।
माता तो हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर की उनकी तबीयत कैसी है, और नहीं तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, रेफर करेंगे बड़े हॉस्पिटल
नहीं,
में।
ऑलरेडी वो रेफर जैसी कंडीशन में नहीं है, सीरियस है पेशेंट।
सीरियस है
हाँ, तो
तो
उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्टिंग बहुत रिस्की है। आप नीचे
सचिन
तो
भाई
हम
को
आ गए,
बुला।
तो हम आ गए और हमने आपको कहा पेशेंट 24 घंटा आईसीयू में ही रहेगा और अभी शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको बाद में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वो सब लगेगा, पर अभी तो मेजर हार्ट अटैक है, बीपी बहुत लो है, आप क्या करेंगे?
तो सचिन भाई तो वहाँ होंगे, बाकी
सचिन भाई सब हो गया, अभी आगे का बताओ।
बाकी वेट एंड वॉच करेंगे।
वेट एंड वॉच नहीं, बाकी क्या करोगे, आपकी कल ट्रेन है
तो उसका
सबकी
तो
कैंसिल, 50 लोगों की
नहीं नहीं उसी माता का टिकट कैंसिल, वहाँ अकोमोडेशन हाँ, में जाके वहाँ
चलो
पे
उसका टिकट कैंसिल होगा, उसके साथ कौन रुकेगा, आपको तो जाना है
तो
वो बताओ क्या है, वो उनको सजेशन दो क्या करना है।
रुक जाएंगे हम तो वहाँ पे,
कौन रुक जाएगा,
खुद रुक जाएंगे।
और आपकी पार्टी को कौन लेके जाएगा, आप सेंटर की दीदी
नहीं
हो?
तो हमारे साथ और भी भाई बहन जो
नहीं, भाई बहन नहीं है, आप ही एकमात्र दीदी है, बाकी सब माता है, बूढ़ी बूढ़ी माता है, बूढ़े बूढ़े भाई।
तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट करेंगे भाई से जो वहाँ पे होंगे हॉस्पिटल में हाँ। और हम तो रुक जाएंगे बस बाबा के साथ में रहेंगे।
इनको कौन लेके जाएगा फिर, कल ट्रेन है उनकी,
सब लोग मिलके योग करेंगे वहाँ।
योग
पे
तो कर लिया, पर लेके कौन जाएगा,
तो किसी से पूछेंगे कि सेवा के लिए कि कोई तैयार है, तो फिर वहाँ पे रोकेंगे और उसके बाद हम पार्टी को लेके जाएंगे।
ठीक है, और कुछ,
और बाकी तो
घर वालों को, हम घर की बात कर रहे हैं, घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करेंगे,
किसी के पास तो नंबर होगा,
नंबर तो है आपको मिल
तो
जाएगा,
फिर उनको कॉन्टेक्ट, उनको फोन पे कॉन्टेक्ट करके बताएंगे।
भयंकर एंटी है उनको, क्या बताओगे आप,
बाबा के घर में कहेंगे कि बाबा के घर में सुरक्षित है, अब आप
सुरक्षित नहीं, पेशेंट डॉक्टर ने कहा सीरियस है,
तो बाबा के ऊपर ही छोड़ देंगे और बाकी डॉक्टर्स जो होंगे तो ड्रामा पे निश्चय।
पर उनको बुलाना तो पड़ेगा ना।
हाँ उनको बुला लेंगे।
तो कैसे बुलाओगे,
उनका कांटेक्ट नंबर तो होगा ही किसी ना किसी
तो
भाई से, तो कांटेक्ट करके
फोन पे क्या बात करोगे बताओ,
फोन पे बात करेंगे कि
करो बात, हम बात कर रहे हैं।
हेलो हेलो
हेलो सुखदेव भाई आप बात करो, ये उनके बेटे है जो कि पूरा विरोध में है, माइक दे दो उनके पास, एकदम कड़क है ये, हाँ ऐसे वैसे मानने वाले नहीं, आप हमारी माँ को कहाँ लेके चले गए।
हेलो हाँ भाई जी,
सबसे पहले तो जैसे लेके गए थे वैसे छोड़ के
हाँ, बिल्कुल
नहीं,
भाई जी
जरा आप... उनको जरा बोलने दो कुछ।
भाई जी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो माता जी
बताओ,
है ना,
बताओ डिटेल।
तो वो उनको थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि रास्ते में भी शायद कुछ परेशानी हो गई थी, तो इसलिए आप परेशान मत हो, यहाँ अस्पताल में है और डॉक्टर की देखरेख में है, तो हम आपको बताते रहेंगे, और बाकी तो यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप परेशान नहीं होना।
ध्यान नहीं दिया होगा उधर,
नहीं
अच्छे
नहीं बिल्कुल ध्यान दिया था, बाबा के साथ है, भगवान के साथ है।
तो भगवान के घर में ऐसा कैसे हो गया,
नहीं तो देखिए शरीर तो है ना, शरीर में बीमारी तो होती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो हम वहाँ पे लेके आएंगे वापस,
जिंदा लेके आना।
हाँ बिल्कुल जिंदा लेके आएंगे।
ठीक है बैठ जाएंगे, नेक्स्ट म्यूजिक स्टार्ट। हाँ पास्ट हिस्ट्री, भाइयों की तरफ अब तो आप भाई जी बाबा के प्यार में कोई गीत गा के सुनाना है आपको, गीत या कविता या कोई लाइन या कोई पंक्ति।
मेरा बाबा प्यारा बाबा, सबसे प्यारा न्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा।
वाह वाह वाह। म्यूजिक आगे, स्टार्ट द म्यूजिक। तो आपके सामने एक परिस्थिति है, आपका बेटा या बेटी जो अभी तक ज्ञान में चल रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे, अचानक उनके मन में अभी संकल्प आ रहा है, वो कुसंग में चला गया है और अभी ज्ञान और योग में बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे या बताएंगे। अभी तक बहुत अच्छा सब चल रहा था, पर अभी वो कुसंग में चला गया है तो उसको बुरे लोगों के साथ, बुरे दोस्तों के साथ बुरी आदतें भी लग रही है, व्हाट यू विल डू?
योग करेंगे और वाइब्रेशन देंगे,
योग वाइब्रेशंस, और
उसको सांत्वना देंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे।
मैं वो सुनने को तैयार
नहीं है, जा रही टोली लेकर के जाइए,
सुनने को तैयार नहीं है वो। वो कहता है बहुत बोर होता है मुझे, ये मुरली विल्ली बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं वही 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 बातें सुनाते रहते हैं, बाप आया है, बाप आया है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करो, विनाश सामने खड़ा है, ये सब मुझे सुनना ही नहीं है,
नहीं
बहुत हो गया।
योग इतना साकाश देंगे उसका चेंज हो जाएगा, मुझे विश्वास है। बाबा
आप सजेशंस देंगे और क्या क्या कर सकते हैं?
उसके फेवर में सब चीजें धीरे धीरे प्रेम से उससे बातें करेंगे, उसको
उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे, और
अब उसके साथ शेयर करेंगे, सब चीजें शेयर करेंगे,
शेयर करेंगे उसके साथ
बातें,
और उसको अमृत वेला खास योग।
हाँ
और भी कुछ? क्या क्या? अच्छा आप मुझे खाली छोड़ने चलो, ऐसे उसको कहेंगे। हाँ ये अच्छी युक्ति है, उसको कहो कि रोज मुझे कम से कम सेंटर छोड़ दे बस, बाकी तुमको आने की जरूरत नहीं है।
बाबा के घर में भी ले आएंगे,
बाबा के घर में पहले आता था, अभी बंद किया है,
उसको समझाएंगे बस, समझेगा। अच्छा। बिल्कुल समझेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
अच्छा पॉजिटिव है। ठीक है बैठ जाएंगे। तो ये क्या थी एक्टिविटी, इसमें अलग 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 परिस्थितियों का चिंतन होते रहना चाहिए, तो ज्ञान क्या बन जाए, प्रैक्टिकल बन जाए। तो हमने आज क्या क्या देखा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग, फिर क्या देखा था, चित्र बनाया था एक देवी का और हनुमान जी का, उसके बाद में 14 प्रकार की अलग अलग अवस्थाओं का हमने चिंतन किया, और लास्ट में क्या किया, एक गेम। उस गेम में अलग अलग परिस्थितियाँ थी और उस अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग चिंतन। ठीक है अच्छा, ओम शांति। राइट हैंड बनने की 3 बातें लिखने की भी एक एक्टिविटी की थी, राइट हैंड बनने के लिए कौन सी 3 बातें चाहिए। तो हमारा माइंड कैसा हो, एक्टिव हो, बिजी हो, ज्ञान चिंतन में, मनन चिंतन में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में, नहीं तो वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। ठीक है अच्छा, ओम शांति। खजानों की बात है, तो 9 खजाने थे और उत्तर आपको खाली दे देते हैं, वो कैसे, वो आपको ढूंढना है। वैसे सभी खजाने श्रेष्ठ हैं, पर सर्वश्रेष्ठ खजाना है गुणों का खजाना। वो कैसे, उसका एक अपना चिंतन है, आप अपना उसके ऊपर चिंतन करो कैसे। ओम शांति।
ओम शांति। हम सब की तरफ से सचिन भाई का दिल से धन्यवाद करेंगे हम लोग आपको। टीवी में बहुत सारे भाई बहन है ना, टीवी में, यूट्यूब में, मोबाइल में देखते थे, तो चैतन्य में देख करके क्या हो जाता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशंस तो फील नहीं कर पाते, या लाइव देखने से क्या होता है, वाइब्रेशन फील होते हैं। तो उस वाइब्रेशंस के साथ आपको सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, सुनाई नहीं सिर्फ अनुभव किया, उस वाइब्रेशन को फील किया, अपने अंदर उतारा है। तो इसलिए हम सब की तरफ से भाई साहब का बहुत दिल से धन्यवाद कहेंगे। एक रिक्वेस्ट सबकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट देती हूँ, बाबा ने जो गुलजार उपवन हमें स्थान बनाया ना, तो मैं कहूँगी आप आ करके इस सेवा के लिए स्थान बनाएं, बट्टियों के लिए, हर साल एक बार, साल में एक बार जरूर आ करके हम सबको ऐसे ही भरपूर करके जाइएगा, सबके लिए। 10 दिन के लिए, देखो भाई 10 दिन के लिए कह रहे, कभी एक माता भी बहनों का और भाइयों का, तब एक दिन भाइयों के लिए रखेंगे, माताओं के लिए, ऐसा हम उसमें अलग अलग बाइफरकेशन करके आप सबको भी मौका रह करके अमृत वेले का जो योग होता है ना, अमृत वेले योग के बाद भाई जी बैठ करके सारे दिन के लिए 15 मिनट के जो टिप्स देते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो ये आप सबको एक मौका मिलेगा, सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है भाई सचिन भाई, सबकी तरफ से, लखनऊ निवासियों आप जरूर सहर्ष स्वीकार करिएगा। ओम शांति।
हमने सुना यहाँ पर किसी को, कोई बहन जी है जो हम लोग एग्जाम लेते हैं उधर, किसी को ट्रॉफी भी मिली है इधर? बहुत सारी बहनें हैं, एक दो और भी कोई है? तो जो फर्स्ट आते हैं, टॉपर्स होते हैं या एग्जाम करते हैं, ऐसी बहुत सारी भट्टियाँ हुई है। अच्छा, ट्रॉफी भी है
यहाँ भी। रोज मुरली के बाद हम लोग एक 15-20 क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन निकालती सोनी बहन, रेगुलर मुरली के पश्चात रोज होता है क्वेश्चन, रोज साकार मुरली का।
किसकी है ये? किसकी है?
रीमा, डॉक्टर रीमा की ट्रॉफी है।
माँ
आई जाइए।
चलो,
तो मधुबन में एग्जाम्स होती रहती है, मुरलियों का अध्ययन प्रोजेक्ट चालू है। अभी हम 2013 और 12 की, 12 और 13 की मुरलियों तक पहुँचे हैं। हाँ, तो उसमें एग्जाम्स होती रहती है और एक बहुत स्टडी होता है, क्लासेस होती है, बहुत सारी नवीनता चलती रहती है, क्योंकि नहीं तो मुरलियों में रस ख़त्म हो जाता है अगर उसमें नवीनता नहीं लाई जाए तो। तो इस तरह से बहुत सारी भट्टियाँ चली है। तो
ये दे दीजिए, जाने पहचाने चेहरों के बीच में आज ट्रॉफी ले लीजिए, वहाँ तो ले जीत भैया। यहाँ पर सारी आत्माएं जितनी है ना भैया, यहाँ जितने बैठे हैं ना, इन सब, ये सब लुटेरे हैं, तो ये बाबा को तो खाली करने में लगे पड़े ही है, या आपको भी खाली करके ही छोड़ेंगे? कह रहे हैं कि 10 दिन बुला करके जितनी आपने तपस्या की है हम 10 दिन में ले लेंगे। और देखो, जैसे अभी दीजिए ने कहा ना, YouTube पर देखते थे, TV पर, मुझे तुरंत याद आया, दुनिया में जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं ना, वो TV में बड़े सुंदर दिखते हैं। आप उनको ऐसे सड़क पर मिलेंगे ना तो पहचान नहीं पाएंगे, वही है, ऐसे दिखते हैं। और यहाँ उल्टा है, यहाँ पर TV में जैसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, सामने आते हैं तो एकदम और सुंदर फरिश्ता और साथ में दिखता है। तो फिर से एक बार ताली बजा दीजिए। और साथ साथ में आपको पता है, जो घर में अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनका बर्थडे मनाने का बहाना ढूंढते हैं, उनका कुछ ना कुछ करने का बहाना ढूंढते ही हैं। तो मैंने सुना है, खाली मुझे पता नहीं है, 29 जुलाई आपका बर्थडे, सही बात है ना? मैंने सोचा था गलत भी होगा तब भी मनाएंगे, क्योंकि जो है हमारे यहाँ, मैंने बताया था ना, हमारे घर में एक कंडीशन थी, जो फर्स्ट आएगा उसका बर्थडे मनाया जाएगा। तो ये तो बाबा का पास विद ऑनर बच्चा है, हम सब मिल करके भैया, और भैया के लिए उनके जैसा ही केक बनाया गया है, ठीक है, फ्रूट केक बनाए। तो दीदी अपने हाथों से, ये केक काटने वाली प्रथा नहीं यहाँ पे, ये सिर्फ खाने वाली है। तो दीदी अपने हाथों से भैया को केक खिलाएंगी, सौगात देंगी, माला, जिसको जो मनाएगा वो करेंगे। अजीत भाई, आप एक बार, अजीत भाई कहाँ गए? आपको जल्दी जाना है ना, जल्दी से पहना के जाइए।